बाबा, ब्रह्मा कुमारियों को कोई चीज मांगने का हक नहीं है, मांगने से मरना भला ऐसा बताया गया है, तो फिर इसका कारण क्या है?
ब्रह्मा कुमारियां किसकी कुमारियां हैं? ब्रह्मा का बाप कौन?
रजो पिता।
और उसका बाप कौन?
शिव बाबा।
ये शिव बाबा कौन है?
साकार निराकार।
साकार निराकार का मेल ये कौन है? वो तो आत्माएं भी है, निराकार और साकार की मेल। सभी मनुष्य निराकार और साकार का मेल। फिर ये शिव बाबा कौन है? अरे,
पहले
सभी मनुष्य का पिता।
हाँ, सभी मनुष्य का पिता तो प्रजापिता है।
आत्माओं का पिता,
आत्माओं का पिता और मनुष्य का पिता।
वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, गॉड फादर, सुप्रीम कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, ऊंचते ऊंच कहा जाता है। तो ऊंच के ऊंच के जो बच्चे हैं, उनको मांगने की दरकार है? कहते हैं हमको ऊंचते ऊंच भगवान बाप मिला है, तो क्या भीख मांगने से साबित होगा?
नहीं।
इसीलिए बताया कि ब्रह्मा कुमारियों को मांगने की दरकार नहीं है। भगवान तो बिना मांगे सब कुछ देता है, भगवान तो अंतर्यामी है, हरेक की अंदर की बात को जानता है। तो बच्चों को क्या जरूरत है ये बाप नहीं जानता क्या? फिर मांगने की क्या दरकार? हाँ
बाबा, बाप वानप्रस्थ में ही क्यों आते हैं?
है?
बाप वानप्रस्थ में ही क्यों आते हैं?
है, वाणी से परे उसे कहा जाता है जो अच्छा खासा अनुभवी हो गया हो इस दुनियादारी का, जान चुका हो कि बहुत वाणी चला ली, बहुत संकल्प चला लिए, बहुत कुछ कर्म इंद्रियों से कर लिया, इच्छाएं तृप्त नहीं हुई, तो आखरी चुपचाप होके बैठ जाता है, वाणी से परे चला जाता है। इसलिए कहा जाता है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, और ज्ञान का होए विराग बिनु। वानप्रस्थ अवस्था में विराग, विशेष दुनिया से वैराग आने लगता है। जब वैराग आता है तब ही ज्ञान की उपलब्धि हो पाती है। तो भगवान तो जो ज्ञान देता है सच्चा ज्ञान देता है, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। उसकी उपलब्धि उसी को होती है जिसको इस दुनिया से वैराग आता है। इसलिए वानप्रस्थ में ही बाप आते हैं।
बाबा, बाबा ने मुरली में बोला है कि जगदम्बा का सबसे जास्ती बंधन है, पर बाबा मुरली जगदम्बा तो कन्या है ना, पति का बंधन बच्चों का बंधन।
अरे कन्या है, कन्या को पति का बंधन बच्चों का बंधन कहाँ से आएगा?
कैसे आया
है?
कैसे हुआ?
उसका नाम जगदम्बा है। किसकी अम्बा? अम्बा माने क्या? अम्मा। किसकी अम्मा?
सारे जगत की।
सारे एक दो चार के आठ की नहीं, हजार दो हजार की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों मनुष्य हैं इस संसार में, अनेक धर्म संप्रदाय वाले सब की अम्मा। तो सबसे बड़ी अम्मा हुई कि नहीं? कन्या कैसे कहा है? अम्मा बिना बप्पा के कहीं अम्मा हो जाती है? है जगदम्बा नाम है, तो जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। जगत की अम्मा है तो जगत का पिता भी जुड़ा हुआ होगा उसके साथ। तो छोटी मोटी माताएं होती हैं, उनको भी बहुत दुख होता है संसार में, कलयुग में खास। और ये तो सब अम्माओं की अम्मा है, बड़े से बड़ी माता है, तो बड़े से बड़ी अनुभवी बनी होगी या ऐसे ही बन गई जगदम्बा है? अनुभवी बनी होगी, कन्या को थोड़ा ही अनुभव होता है दुनियादारी का। और
बाबा अहिल्या के लिए कहते हैं ना कि बाबा के सामने अहिल्या
है।
हाँ, अहिल्या के लिए कहते हैं ना, बाबा के सामने सर्प जैसी आत्माओं को लेकर आ जाती है,
है।
लेकिन शास्त्रों में तो दिखाते हैं कि इंद्र जो है ना वो गौतम ऋषि का रूप लेकर आता है, तो गौतम ऋषि उसको श्राप दे देता है, तो उसमें अहिल्या का क्या दोष है बाबा?
ये तो शास्त्रों में लिखा है, बाबा ने शास्त्रों की बात बताई क्या? बताई शास्त्र किसी ने लिखे है? शास्त्र तो भिखारी मनुष्य ने लिखे, शिव बाबा ने थोड़े शास्त्र लिखे। हाँ, उनमें से जो सार की बात है वो बाबा ने बताई कि अहिल्या नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सर्प की तरह अहि माने सांप की तरह जो भिखारी है उनको ले आई। अब वो इंद्र क्या था? इंद्र भिखारी था या निर्भिकारी था? इंद्र किसका पार्ट है? इंद्र किसका पार्ट है? अरे बताओ ना, ब्रह्मा बाबा का पार्ट। जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो वसु का पुत्र है या नहीं? जैसे कहते हैं वासुदेव, वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है, तो वो वसु का पुत्र वासुदेव हो गया। ऐसे ही उसे वासुदेव कहो चाहे वासुकी कहो, वासुकी उस नाग का नाम है जो सदैव इसके गले में पड़ा रहता है, है शंकर जी के गले में पड़ा रहता है। क्यों गले में क्या है? शंकर जी के गले में क्या है जो गले में पड़ा रहता है? अरे विष है। सांप के अंदर जबरदस्त चीज क्या होती है?
विष।
विष होता है। तो वासुकी नाग है। अब समझ में आया क्या है? बोलो, किसने प्रश्न किया था? है क्या समझ में आया? है बोलो, है
सार बता दिया बाबा।
है
सार बता दिया बाबा ने,
सर्प बता दिया ना। हाँ, और
तुलसी का पौधा आंगन में क्यों लगाते हैं?
है
उसकी पूजा करते हैं और नमन करते हैं।
है
तुलसी भी देवी देवता में आती है?
और क्या, पूजा किसकी की जाती है?
पवित्र,
पवित्र की पूजा की जाती है। अब पवित्रता पालन करने में नंबरवार होते हैं या अब्बल नंबर भी होते हैं? है नंबरवार भी होते हैं और अब्बल नंबर होते हैं कि नहीं? तो जिनकी अब्बल नंबर है, स्टेज होगी पवित्रता में, उनको विशेष मान दिया जाएगा या कम मान दिया जाएगा? विशेष मान दिया जाएगा। तो दो हैं, एक है तुलसी महारानी और एक है लक्ष्मी महारानी। दोनों ही महारानी है या नहीं है? लेकिन आंगन में बैठाई दी गई और एक को बेडरूम में बैठाया, तो बैठाने वाला ये जानता होगा कि बेडरूम में उसे बैठाने का मान्यता क्यों दी और उसे आंगन में क्यों बैठा दिया बाहर? है बाहर किसको बैठाया जाता है बेडरूम के बाहर? है दास दासियों को बाहर बैठाया जाता है। अगर वो दास दासी ही है तो फिर उसकी पूजा क्यों होती है? जो भी गृहस्थी है तो उसी को आंगन में रखते हैं, पूजा भी तो करते हैं। है क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि जरूर उसने पवित्रता धारण की है, ऐसी पवित्रता धारण की है जो सारे संसार को उसके सामने झुकना पड़ता है। माता गुरु बनाना पड़ता है, ऐसी माता गुरु। क्या बनती है? है अरे सबके ऊपर राज करने वाली बनती है या नहीं बनती है? है बनती है, राज करेगा खालसा। परंतु जहाँ नारायण और नारायणी की बात आती है उनके सामने उनको दरबान होके रहना पड़ता है, दरवाजे पे बैठना पड़ता है। जरूर नारायण और नारायणी ने ज्यादा पुरुषार्थ किया होगा इस बात में, है पवित्रता को पालन करने में। वो वफादारी जो नारायणी ने दिखाई है, वो वफादारी तुलसी माता ने नहीं दिखाई। गीत बनाए दिए, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं अपने साजन की, ऐसे ऐसे करके गीत बनाए दिए।
बाबा ने बोला मैं वहाँ आता हूँ जहाँ दो रोटी भी नहीं मिलती, तो सारी दुनिया में तो सबसे गरीब स्थान तो ओडिशा है,
है?
सबसे गरीब तो ओडिशा है ना,
सबसे गरीब ओडिशा है,
वहाँ तो खाना ना मिलने पर माँ अपने बच्चों को काट के खा जाते हैं, तो ओडिशा में क्यों नहीं आए भगवान?
देखो हत्यारे से हत्यारे दुनिया में नहीं होते हैं,
होते।
उत्तर प्रदेश में तो मैनपुरी में एक 36 लोगों के परिवार को एक ही रात में काट डाला, इतने बड़े हत्यारे तो उड़ीसा में नहीं सुने होंगे।
पर वो तो हत्यारे है ना,
किस बात के लिए हत्यारे, तो पूछा ही नहीं
किस बात के
है, वो ही धन संपत्ति के लिए। और
दादा
है
बावन मुरली में एक मुरली में बोला है तुम बच्चे अंत में बाबा की याद भूले तो कैसे भूले,
हाँ?
दूसरी मुरली में बोला है तुम बच्चों को बेहद का भोजन मिलेगा ही नहीं,
हाँ?
एक मुरली में बोला है तुम बच्चे अंत में बाबा की याद भूले तो कैसे भूले,
हाँ?
दूसरी मुरली में बोला है तुम बच्चों को बेहद का भोजन मिलेगा ही नहीं,
और क्या बेहद का भोजन नहीं मिलेगा तो ताकत आएगी आत्मा में, है?
नहीं।
और आत्मा में ताकत ही नहीं होगी, ज्ञान योग की ताकत नहीं होगी तो बाप को पहचानेंगे, भूल जाते हैं, माया बुलाई देती, तो क्या बुरा कहा, एक ही बात तो है, अरे दो बातें हुई,
एक ही बात हुई लेकिन एक में वो बोला है ना कि अंत में बेहद का भोजन मिलेगा ही
नहीं, मिला ना बेहद का भोजन नहीं मिला ना, आत्मा को ज्ञान और योग का भोजन मिलता है अंत में, अगर मिले तो जो तुम बच्चे जिन्हें बोलते हैं बाबा अष्ट देवों को, वो माया के पंजे में फंसेंगे
नहीं
फंस सकते, ना उनके पास ज्ञान है ना उनके पास वो प्यार की पावर रही, प्यार को योग कहा जाता है।
फिर एक अब की बात जो दूसरी बात बताई है ना,
क्या
तुम तो क्या भूलेंगे ही नहीं,
कैसे
भूले, ये ऐसी स्टेज हो जाएगी,
क्या हो जाएगा,
याद कैसे भूले,
बाबा की याद भूल ही नहीं सकते,
तुम बाबा की याद भूल नहीं सकते,
भूले तो कैसे भूले,
भूले तो कैसे भूले, बता दिया कैसे भूले,
नहीं बना ऐसे हो जाएगा, ऐसी स्टेज बन जाएगी, ऐसे बाबा बोले थे ना,
मतलब भूलना चाहे तो भी नहीं
भूल सकते,
भूलना चाहे
की बात है,
भूलना चाहे
तो भी ना भूले,
तो भी नहीं भूल सकते, तो वो एक के लिए बोला, सब के लिए थोड़े ही बोला। हाँ
बाबा,
हाँ
दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा,
जोर से
दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा और एक तरफ यूपी है,
हाँ
तो ये चारों तरफ घेरा डाल देंगे तो दिल्ली पे विजय निश्चित है,
हाँ
तो यहाँ दिल्ली जैसे चैतन्य में है वैसे हरियाणा और यूपी यह भी चैतन्य में है क्या,
और क्या, हरी हरी किसको कहा, कृष्ण कौन है, हाँ तो जो संगम युगी कृष्ण हरी है उस हरी को बुला रहे हैं, हरी आना, ऐसे बुलाने वाले तीन तरफ से घेरे हुए बैठे हैं दिल्ली को, क्या कहा, हरी आना, ऐसे बुलाने वाले दिल्ली को तीन तरफ से घेरे बैठे हैं, कौन है, तीनों दिशाओं से घेरे बैठे हैं, एक चौथी दिशा बसी है उधर से यूपी घिरे बैठी है, कौन है, हाँ तो फिर घेरे में आएगी कि नहीं है, दिल्ली पर दुनिया की नजर है, बोला बाबा ने, दिल्ली पर सारी दुनिया की नजर है, बाप की भी नजर है। तो फिर जब बाप की नजर है तो बाप के जो सिकिल्दे बच्चे हैं उनकी नजर नहीं होगी है? होगी, इसीलिए तीन तरफ से घेरा हुआ है।
तीन तरफ से कौन घेरे हुए
है?
तीन तरफ से कौन घेरे हुए हैं दिल्ली?
हरियाणा
नहीं मना, वो हरियाणा बुलाने वाले,
वो बुलाने वाले कौन हुए? हरियाणा वाले हुए ना, बुलाने वाले कौन हुए?
एडवांस वाले में।
हाँ बिल्कुल, एडवांस वाले में भी मेन कौन है बताओ? अरे एडवांस में आए वालों में भी मुख्य कौन जो बहुत बुलाते हैं? हैं? इतना किसी मिनी मधुबन वाले नहीं बुलाते हैं बताओ? अरे बुलाते होंगे तभी तो आते होंगे। अरे योग बल से खींचते होंगे, बुलाते होंगे दिल से तभी तो आते होंगे कि बिना बुलाए आते होंगे?
बुलाते
तो बुलाते हैं तो आते हैं। तो उनको रग लगी हुई है, हरी आना, महीना पूरा हुआ ना, आना। और है हरियाणा वाले, हरियाणा नाम है तो हरा भरा रहता होगा ना, है? है? अष्टदेव की बात है, नहीं है सिर्फ है।
तो तीनों तरफ से मतलब समझ में नहीं आया,
अरे
तरफ से घेरे हुए
हैं। हाँ एक तरफ से यूपी घेरे हुए है,
एक तरफ से यूपी मतलब बाबा,
बाबा कहो मम्मा कहो कोई भी कहो
ठीक
है,
तीनों तरफ से,
तीनों तरफ से तीनों दिशाएं जो बच गई। अब कौन सी दिशाएं बची?
दक्षिण पूर्व पश्चिम,
बस दक्षिण बचा, उत्तर बचा, पूरब बचा, वो पूरब और पश्चिम बचा। हाँ हाँ
जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना,
है?
गुरु ग्रंथ साहिब है ना,
है?
उसकी हर लाइन ज्ञान के साथ टली होती है।
हाँ
तो गुरु ग्रंथ साहिब लिखने वाला कौन और उसको पहले से मालूम था?
गुरु ग्रंथ साहिब के जो भी महावाक्य हैं वो नानक ने बोले हैं, और नानक के जो बोले हुए महावाक्य हैं उनके चेलों ने लिखे हैं, जो एक के बाद एक के बाद एक गुरु बनते रहे उन्होंने उनका संकलन किया। हाँ
बाबा,
हाँ
मैंने 2500 साल में सबसे पहले इस्लामी आया ना,
ठीक है,
उसके बाद फिर 250 साल के बाद बौद्ध आए,
हाँ
240 साल के बाद क्राइस्ट आए,
हाँ
500 साल के बाद सन्यासी आए,
हाँ
फिर 100 साल के बाद मुस्लिम आए,
हाँ
900 साल के बाद सिख आए, तो ये अलग अलग समय का अंतर क्यों है?
हाँ छोटे बड़े का अंतर है, कोई बच्चा बाद में पैदा होता है, कोई जल्दी पैदा हो जाता है, ये कोई ये, क्यों क्यों ये बच्चे इतनी जल्दी क्यों पैदा हो गए हैं? ये जल्दी ये बच्चे ने इतनी देर में क्यों पैदा हुआ, ऐसे कोई तराब थोड़ी लगाई जा सकती है।
मतलब संगम में भी इसकी शूटिंग होती
है?
संगम में भी इसकी शूटिंग होती
है? हाँ हाँ
बाबा, रामायण में दिखा है ना अनुसुईया सीता को ऐसी साड़ी देती है जो कभी महंगी नहीं होती है, उसका ब्याह का
है?
अनुसुईया सीता को ऐसी साड़ी देती है जो कभी महंगी नहीं होती है।
सीता को
अनुसुईया,
अनुसुईया
सीता को
हाँ।
ऐसी साड़ी देती है
हाँ।
जो कभी मैली नहीं होती
हाँ। तो क्या हुआ सीता माने क्या
शीतल
और जिसके स्वभाव संस्कार में शीतलता होगी सहनशीलता होगी या नहीं होगी है
होगी
तो जिसमें स्वभाव संस्कार में सहनशीलता शीतलता भरी हुई है वो उसकी साड़ी कैसी होगी है शीतल ही होगी नाम ही है सीता अनुसुईया ही तो सीता को देती है और क्या जो लक्ष्मी है उसकी साड़ी जन्म जन्मांतर मैली होती है क्या
नहीं।
फिर इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही अनुसुईया नहीं तो दिया अरे हाँ बात ही देर तक पहुंचती है घूम घाम के
बाबा बोलते हैं ना कि मैं साक्षात्कार की चाबी जो है वो किसी को नहीं देता हूँ साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता
और क्या सब प्रैक्टिकल में भगवान बन के बैठ जाएंगे
तो सूरदास मीरा भाई को फिर साक्षात्कार कैसे हुए
तो उनकी आत्मा में नुदे हुए थे उस समय हुए उस समय शिव बाबा होता ही कहाँ जो चाबी देगा ये तो संगम युग की बात है कि संगम युग में जो मैं साक्षात्कार कराता हूँ वो चाबी मेरे पास रहती है मैं वो चाबी किसी को नहीं देता और
सूक्ष्म शरीर होता है क्या
नहीं सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है जो बहुत पाप करते हैं सत्युग त्रेता में पाप करते हैं क्या फिर वहाँ सूक्ष्म शरीर क्यों मिलेगा भूत प्रेतों को सूक्ष्म शरीर होता है वहाँ कोई पाप कर्म करता ही नहीं तो भूत प्रेत बनेगा क्यों पापों का भरा जब बहुत भर जाता है तो और ज्यादा न भरे इसलिए उनको अचानक मौत हो जाती है तो वो भूत प्रेत बन जाते हैं भूत प्रेत बनने के बाद उनके पाप कर्मों का घड़ा भरता नहीं है पुण्य भी नहीं बनते तो पाप भी नहीं बनते
बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं और बाबा जोर जोर से खांसते रहते हैं
खांसते
वह भी देते रहते हैं तो इन आत्माओं के साथ क्या सेटिंग होगी
ब्रह्मा बाबा की
नहीं नहीं बाबा की
बाबा कहाँ खांसते रहते
नहीं कभी कभी खांसते रहते
है
कभी कभी खांसी आती है ना फिर भी जवाब देते रहते हैं
वो तो कोई को भी आती रहती होगी जो ज्यादा बात करेगा उसको ज्यादा बात करने से खांसी भी आएगी बाप का काम है बच्चों को समझाना और बच्चों का काम है प्रश्न करना
ऐसी आत्माओं के साथ क्या शूटिंग होगी
अच्छी शूटिंग होगी
क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर जो देते हैं खांसी तो नहीं आती ना
हाँ
कुछ कुछ बच्चे प्रश्न पूछते तो खांसी आती है
नहीं ऐसा तो नहीं होता है कोई बच्चे ने प्रश्न पूछा होगा और खांसी आ गई तो उन्होंने कहा कोई बच्चा ऐसा है दमदार कि बाबा को खांसी दिला देता है वो बच्चा इनको दमदार दिखाई पड़ता होगा ये तो अपना अपना पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है कोई ज्यादा दमदार दिखाई देता है कोई ज्यादा सुंदर दिखाई देता है कोई नहीं दिखाई देता है ऐसा होता है कि नहीं है
बाबा जो तीन माता है ना जगदम्बा माँ तीन माता है जगदम्बा माँ योगिनी माँ और छोटी माँ इन तीनों की याद में क्या अंतर है जबकि इन तीनों की धारणा एक ही है कि एक बाप दूसरा न कोई
तीनों की धारणा एक जैसी है याद में क्या अंतर है उसका नाम ही योगिनी है, अंतर नहीं हुआ है? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। अच्छा चलो कोई गुण नहीं, सबसे बड़ा गुण क्या होता है? है जो अब्बल नंबर वाला अब्बल नंबर विश्व का बादशाह बन जाता है, है? खेनशीलता, खेनशीलता में ब्रह्मा बाबा विश्व का मालिक बनता है?
नहीं, याद योग
है, याद में पास तो सब सब्जेक्ट में
पास,
याद में फेल तो सब्जेक्ट में फेल, तो नाम ही योगी नहीं पड़ा है। हाँ
जगदम्बा माँ और छोटी माँ, जगदम्बा माँ और छोटी माँ का,
हाँ
उन दोनों का
जो उन दोनों योग होता तो वाह भैया। ब्रह्मा बाबा का योग बच्चों में बटा हुआ रहता था कि नहीं? बच्चों की चिंता रहती थी कि नहीं?
रहती।
जब ब्रह्मा बाबा की चिंता रहेगी तो ब्रह्मा बाबा जिस समय प्रवेश करके पार्ट बजाता है उसको चिंता नहीं रहेगी दुनियादारी की, वो तो जगत की अम्मा है। तो माताओं का स्वभाव क्या होता है?
बच्चों
की चिंता रहती है, तो बुद्धि तो वहाँ जाएगी ना। और क्या?
छोटी
माँ, छोटी माँ तो है ही बकरी है, वो तो जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के गीत गाएगी। और
बाबा सागर मंथन हुआ तो पहले तो विष निकला फिर 14 रतन निकले, बाद में 14 जो रतन निकले उसका क्या अर्थ है?
रतन का मतलब है 7-8 प्रकार के रतन हैं, नाम है ना अलग अलग, तो 7 हैं मेल, चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। 7 हैं मेल और 7 हैं फीमेल, 14 हो गए। और
बाबा,
हाँ
बाबा ने बताया है कि सेवा करने से अवस्था अच्छी बनी रहती है, लेकिन जो बहन किचन में सेवा करती है ना तो वो खाना खाने नहीं देती है,
है?
वो खाना खाने नहीं देती है,
खाना खाने नहीं देती है।
जब खाने के लिए जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ उल्टी सुलटी बातें बताती है या फिर गंदे गाली भी देती है,
गंदे गाली भी देती है,
तो जिससे जो खाने वाले हैं ना वो खाना छोड़ देते हैं,
हाँ।
तो उन्हें भी लग पड़ते हैं,
हाँ, उनका मूड ऑफ हो जाता है।
तो ऐसे जो रुलाने का कार्य कर रही है,
हाँ?
निमित बहन भी उसका सपोर्ट करती है,
हाँ?
तो उन लोगों की क्या शूटिंग होगी बाबा?
उन लोगों की शूटिंग क्या होगी? ये तो कलयुग में शूटिंग होगी, सत्युग में अच्छी शूटिंग होती है और कलयुग में खराब शूटिंग होती है। नहीं तो हिसाब तो बाबा ने ये बताया है कि जो चूल पर सो दिल पर, चूल्हे पे है सो बाबा के दिल पर है। अब चूल्हे पर होते हुए भी दिल से उतरने वाली बातें करे, श्रीमत के बरखिलाफ बातें करे, क्योंकि चूल्हे पे तो माँ होती है, चूल्हे पे चढ़ने का धंधा कौन करती है?
माँ
करती है। और माँ तो सब बच्चों के लिए समान व्यवहार करती है, सबको देती है, या किसी को देती है किसी को नहीं देती है? समान व्यवहार करती है। अब नहीं करती है तो दिल पर नहीं चढ़ेगी।
बाबा, साल में 12 महीने होते हैं,
है?
साल में 12 महीने होते हैं,
हाँ?
उसमें से सावन और कार्तिक के महीने में शुद्धता और भक्ति ज्यादा होती है,
हाँ? क्योंकि 3 ऋतुएं होती हैं खास, सर्दी गर्मी बरसात। सर्दी है सतयुग त्रेता और गर्मी है द्वापर कलयुग, है कि नहीं? और बरसात का मौसम संगम युग। तो संगम युग में रिम झिम रिम झिम रिम झिम सारी मास क्या बरसता रहता है? ज्ञान जल बरसता रहता है। कौन बरसाता है? शिव बाप भगवान बरसाता है। तो ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, है? ज्यादा महत्व होना चाहिए, भगवान बाप साकार में बरसाता है या निराकार में बरसाता है?
साकार में।
साकार में आकर बरसाता है। अच्छा, तो साकार भगवान की बात हो गई। अब साकार भगवान के मुकाबले कोई साकार शैतान भी होते होंगे कि नहीं है? होते होंगे। तो बताओ, जो भी शैतान हैं, उन शैतानों में बड़ा शैतान कौन है?
ब्रह्मा।
बेचारा उनके ऊपर चढ़ रही थी। कौन सा धर्म है जो बहुत शैतानी करता है?
इस्लाम
है।
इस्लाम धर्म।
फिर इस्लाम धर्म का बीज कौन हुआ? कार्तिक। तो कार्तिक मास उसके लिए पूजा जाता है।
बाबा
है।
स्वर्ण भस्म जो अमीर लोग जो खाते हैं ना,
उस है?
स्वर्ण भस्म अमीर लोग खाते हैं,
हाँ।
उसका क्या अर्थ है?
सोने की भस्म। भस्म बहुत पावरफुल दवाई होती है। सब दवाइयों में सबसे जास्ती पावरफुल भस्म होती है। कोई भी चीज फैली हुई होगी तो उसमें ताकत कम है, और उसका छोटा रूप बना दिया तो ताकत ज्यादा हो जाती है। जैसे बीज है, बीज में ज्यादा ताकत है, और वो ही बीज फैल करके वृक्ष बन जाता है तो उसमें उतनी ताकत नहीं रहती। ऐसे ही भस्म है, तो भस्म है। और फिर सोने की भस्म, सोना सच्चाई को कहा जाता है। क्या? सच्चाई को कहा जाता है। और भस्म कैसे बनाई जाती है? जला के भस्म बनाई जाती है। तो सच्चाई भी कैसे निकलती है? है? आत्मा झूठी बन गई कि सच्ची? झूठी बन गई। तो क्या करें कि सच्ची बन जाए? योग की अग्नि में भस्म करो। पाप कर्म जब उसके भस्म हो जाएंगे, खाद भस्म हो जाएगी, तो क्या बचेगी? सच्ची भस्म बचेगी, सोने की भस्म। फिर वो सोने की भस्म खूब गाओ, पावरफुल आत्मा बन जाओगे। नहीं,
अमीर लोग खाते
हैं। अमीर होंगे तभी तो खाएंगे, बेहद के साहूकार होंगे तभी तो खाएंगे। ज्ञानी नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा, बहुत बड़ा साहूकार होगा बेहद का, वो भस्म ज्यादा खाएगा सोने की। जिनको चाहे है ही नहीं लटू ले जमा, वो तो खाएंगे। कौन खाएगा? है ज्यादा साहूकार होगा, बड़ा साहूकार होगा, सोचा ये पैसा तो सारा बेकार चला जाएगा, क्यों ना जितना पेट में डाले उतना फायदा होगा। उनका पेट होता है दुनिया वाले साहूकारों का नीचे वाला, और हमारा पेट होता है ऊपर वाला। तो भरे जाओ खूब।
तो जोड़ियों की बनती है।
हाँ,
पर जिनका पोती शरीर छोड़ दिया उनको माला कैसे?
बाबा मुरली में कहते हैं तुम्हारा पति ज्ञान में नहीं चलता। अच्छा, तुम तो ज्ञान में चलो, तुम्हारा पति ज्ञान में नहीं चलता है तो सतयुग में ऊंच पद नहीं पाएगा।
जिनका शरीर छोड़ दिया पति,
शरीर ने पति छोड़ दिया, वो पति ने शरीर छोड़ दिया, पति ने शरीर छोड़ दिया तो क्या सतयुग में तुमको पति नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रोटी काहे के लिए? मरी जा रही है पति की आदमी।
तो माला बनती है कैसे?
हाँ, माला बनेगी उसके साथ, जो सतयुग में तुम्हारा पति बनेगा। चिंता मत करो, बुढ़े को बुढ़ा ही मिल जाएगा।
बाबा बाबा, तो
दधीची ऋषि की हड्डियों का तो वज्र बन जाता है ना, और मांस कामधेनु खा जाती है, तो फिर इसकी शूटिंग कैसी होती है बाबा?
दधीची कौन है?
ब्रह्मा।
ब्रह्मा बाबा। और उन्होंने हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया कि नहीं
किया?
हैं?
किया।
जो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, उस हड्डी हड्डी पुरुषार्थ से टैली कोई का पुरुषार्थ होता है? है नहीं? उस हड्डी हड्डी पुरुषार्थ के साथ कोई का पुरुषार्थ टैली होता है या नहीं टैली होता है?
उससे ज्यादा होता है ना?
नहीं, हड्डी हड्डी तो वो ही ने स्वाहा की, किसने? कैसे
पता नहीं।
एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, जो बहुत विकारी होते हैं ना, विकारों को छोड़ ही नहीं सकते, उनके लिए बोला है अव्यक्तवाणी में, ये तो ये बच्चे समझते हैं कि हम सुख भोग रहे हैं। अरे तुम सुख नहीं भोग रहे हो, तुम अपनी हड्डियां गला रहे हो, हड्डियां चूस रहे हो, जैसे कुत्ता हड्डियां चूसता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर खून बनता है, ढेर सारा खाना खाओ तो थोड़ा सा खून बनेगा, सार बना ना, उस खून से ही हड्डी मांस मज्जा और रजवीरी की शक्ति बनती है। जिस रजवीरी की शक्ति से लाल पैदा होता है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज कौन सी हुई? है हड्डियों से भी, जैसे नौजवान आदमी होता है तो हट्टा कट्टा मोटा ताजा होता है, हड्डियों में ताकत होती है, होती है ना? फिर जवानी को भोगते भोगते, जवानी के सुख भोगते भोगते, उसकी हड्डियां छीण हो जाती हैं, पतली पड़ जाती हैं, या लंबी चौड़ी मोटी ताजी हट्टी कट्टी रहती हैं, वजन वजन रहता है, छीण हो जाती है। तो हड्डी छीण होना माना जो रजवीरी की शक्ति है वो समाप्त होती जाती है। ये जो रजवीरी है वो ही वास्तव में हड्डी का दूसरा रूप है, वो हड्डी हड्डी स्वाहा ब्रह्मा बाबा ने की। कैसे? ब्रह्मा बाबा पक्के योगी थे? क्यों नहीं योगी थे? हैं?
बुद्धि बच्चों में,
योगियों का हाल चल नहीं।
वो शिव बाबा को याद नहीं करते थे? हैं?
साकार की पहचान नहीं थी।
हाँ, निराकार को याद करते थे, उन्हें भगवान का जो प्रैक्टिकल रूप है, जो नरक को स्वर्ग बनाता है, जो पतितों को पावन बनाता है, उसका प्रैक्टिकल रूप का उनको पता ही नहीं था। जब प्रैक्टिकल स्वरूप को, सच्चे रूप को याद ही नहीं करेंगे, तो फिर उनमें वो योग की ताकत कहाँ से आएगी? बस समझते थे मैं भगवान का साकार रूप हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जो बच्चे बच्चियां आते थे उनको गोद में लेकर के खो, जैसे माँ बाप बच्चों को गोद में लेके खिलाते हैं ना, ऐसे। अच्छा ठीक है, बुड्ढों में विकार की ताकत होती है कि नहीं? बुड्ढों में विकार होते हैं या नहीं होते हैं? अरे अरे जोर से बोला ना, होते हैं। बाबा ने क्या कहा इस बारे में मुरली में? है बुड्ढों के बारे में कुछ बोला? अरे कुछ बोला कि नहीं? 70 साल के बुड्ढे भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, ये बोला कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 70 साल के बुड्ढे होते हैं उनका भी वीर्य स्खलन होता है, वीर से ही बच्चे पैदा होते हैं। और देवान में आकर के कोई पुरुष जिन्हें दुर्योधन दुशासन कहा है, कोई ऐसा पुरुष है जिसको बाबा ने छोड़ दिया हो दुर्योधन दुशासन कहने से? है दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो उनमें ब्रह्मा और शंकर की आत्मा आती है कि नहीं आती है? है या प्रजापिता कहो, शंकर तो नहीं कहेंगे, शंकर तो संपूर्ण अवस्था का नाम है। क्या कहो? प्रजापिता। उनको देवान आता है कि नहीं है? आता है। वैसे भी मुरली में बोला विष्णु को और शंकर को देवान आता है या नहीं? आता है। तो जब देवान आएगा तो शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी?
होगी।
है?
होगी।
और रोज बच्चों को गोद में लेना, रोज उनको प्यार करना, देह से चिपक चिपक करना, तो देवान आएगा या नहीं आएगा? देवान आता था और स्खलित होते रहते थे अंदर। वो समझते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, तो वीर्य अंदर अंदर स्खलित होते जाना ये सबसे ब्रह्मचारी बड़े की निशानी हो गई क्या? नहीं, ये तो समाज से छुपाने वाली बात हो गई, समाज की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई। परंतु उन्होंने जितना बच्चा बुद्धि से समझा योग को और भगवान को, उस हिसाब से उन्होंने उसका पालन किया। तो बच्चों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी या नहीं कर दी? है? कर दी। इतनी हिम्मत दुनिया में और किसी ने नहीं दिखाई जो बच्चों के लिए इतना त्याग करे। अंदर से तो समझते थे कि शक्ति क्षीण हो रही, रोक तो नहीं पाए, परंतु हड्डी हड्डी तो जरूर स्वाहा की। उस हड्डी हड्डी में भी हड्डी किसके काम आई? है? वज्र बन गया। वो वज्र क्या है? और वो मांस क्या है जो कामधेनु खा गई? है? कामधेनु का क्या विशेषता है? सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। तो मांस में भी खासियत होगी या नहीं होगी? जब हड्डियों में ताकत है इतनी कि वज्र बन जाए, तो मांस में भी ताकत हुई? क्या ताकत हुई? मुसलमान कौन से जानवर का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं? गाय का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे वहाँ बकरी बहुत होती है मुसलमानों के देश में, लेकिन बकरी का मांस उतना पसंद नहीं करते जितना गाय का मांस पसंद करते हैं। क्या मतलब हुआ? सबसे जास्ती देहभानी धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो मांस को बहुत प्यार करता है ना, तो किसका मांस खाते हैं?
गाय का
मांस। और गौओं में भी सबसे अच्छी गौ कौन सी मानी जाती है? कामधेनु। वो कौन सा राक्षस है जिसने वृंदा के साथ शादी की थी? है?
जलंधर।
जलंधर साक्षात जल को धर बैठा, धर लिया। तो साक्षात ज्ञान जल का रूप कौन? जगदम्बा। क्यों धर लिया? क्योंकि उसकी प्योरिटी के आधार पर उसका शरीर बहुत सुंदर था। तो प्योरिटी के आधार पर जो शरीर सुंदर था, उस सुंदरता के प्रति उसका आकर्षण था। बाबा भी कहते मुरलियों मुसलियां बड़ी सुंदर सुहैनी सुहैनी होती है, एक आंख बंद करके देखती है, सारा शरीर ढांक करके रखती है कोई की नजर न पड़ जाए। तो है देहभान की बात, मांस की बात नहीं है, काय की बात है, देहभान की बात। माताओं में देहभान होता है, माताओं में सबसे बड़ी माता है कामधेनु, सबकी कामना की पूर्ति करती है। इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियंस हो, एक दिल्ली ही ऐसी है जिसकी गोद में सब धर्म वाले पले हैं। सब धर्म वालों ने उसके मांस को निचोड़ के दूध के रूप में पिया है। बच्चा क्या करता है? माता का दूध पीता है? दूध का इसे बनता है? हैं? जितनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी गई गऊ होगी तो उतना दूध देगी, कमजोर होगी तो दूध भी कम देगी। तो सब धर्म वालों ने माता के उस माता के गोद में खेल किए हैं, हिंसा भी की है। और जो हिंसा करता है उसको ज्यादा मजा आता है, या जिसकी हिंसा होती है उसको ज्यादा मजा आता है? हिंसा करने वाले को ज्यादा मजा आता है। तो सब इच्छाओं की पूर्ति, सब की पूर्ति, सारी दुनिया की इच्छाओं की पूर्ति जगदम्बा से होती है। तो दिखाते हैं ये जगदम्बा माने मांस खाया दधीचि ऋषि का, तो तपस्या ज्यादा ज्यादा किसको मिली? जगदम्बा को मिली और हैं वज्र समान पुरुषार्थ करने वाले को मिली। सब शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? वज्र। गीता में क्या बोला हैं?
आयुधानम
हम
वज्र।
हाँ, आयुधान माने
आयुध,
आयुधों में शस्त्रों में। तो शस्त्र धारण करने वालों में श्रेष्ठ कौन है?
राम
है।
राम
राम और शस्त्र वर्ताम हम। तो राम वाली आत्मा का जो शस्त्र है वो कैसा है? हैं? धनुष कहो चाहे वज्र कहो, शिवजी का धनुष भी तो प्रसिद्ध है। क्या परशुराम आए राम के विवाह में धनुष यज्ञ में, तो क्यों नाराज हुए? है ये मेरा शिव का धनुष किसने तोड़ा है? अपने को शिव का बहुत बड़ा भक्त समझते थे, नाराज हो गए। तो शिव का धनुष कहो या उसको इंद्र का वज्र कहो, बात एक ही है। दोनों में कठोरता, हाँ अंतर यह है कि धनुष में लचीलापन ज्यादा होता है, जितना खींचेंगे उतना खींच जाएगा, उतनी तीव्र गति से बाण छोड़ेगा। तो ये शरीर रूपी धनुष है, शरीर रूपी वज्र है। और
बाबा कंचन का या
4-5 लाख आत्माओं की होती है, साढ़े चार लाख आत्माओं की होती है, वो जीते जी काया कल्पतरु बनते हैं, उसका गायन कब होती है? क्या ये गायन सिर्फ 8 के लिए है?
जो रुद्रयज्ञ रचे जाते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा कितने शालिग्राम बनाते थे? हैं? नहीं, लाखों की तादाद में शालिग्राम बन, जितना बड़ा साहूकार उतने जास्ती ब्राह्मण बना करके बैठाता था शालिग्राम बनाने के लिए। बहुत बड़ा साहूकार होगा तो ढेर के ढेर सारे देश के ब्राह्मणों को बुला करके बैठाएगा, क्या करो शालिग्राम बनाओ। तो वो शालिग्राम किसकी यादगार है?
आत्माओं की।
वही सुबह को बनाते थे और शाम को तोड़ डालते थे। हाँ। हाँ।
सूक्ष्म शरीरधारी सोल होते हैं ना, वो किसी शरीर में प्रवेश कर विगर वस्तु को देख सकती है, सुन सकती है क्या?
किसी में प्रवेश करके तो देख सकती है, हैं?
प्रवेश करे बिगर देख सकती
है। हाँ, किसी शरीर में प्रवेश करके देख सकती है कि नहीं देख सकती है? देख सकती है।
बिना प्रवेश किए
हैं?
बिना प्रवेश करे
बिना शरीर के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और
भीष्म पितामह ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया ना, तो वो योगी बने, मैंने प्रण ब्रह्मचारी का प्रण लिया तो योगी बने, तो ब्रह्मा कुमारियाँ भी ब्रह्मचारी है ना, तो वो कैसे, वो उनका क्या बात है?
वो क्या भीष्म पितामह है? ग्लोबल है, हॉस्पिटल बनाए फिर कहते हैं हम भीष्म पितामह है। हैं? किसने तुमको बता दिया कि ब्रह्मा कुमारी है भीष्म पितामह?
अब और किसी का प्रश्न
है?
और किसी का प्रश्न
है?
बाबा, निराकार साकार में, निराकार साकार में प्रवेश करता है तभी अभोक्ता अकर्ता अजन्मा का पाठ बजाता है।
हा?
लेकिन बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है।
हा?
तो अभोक्ता रोएगा क्या?
अभोक्ता भगवान बनेगा, धनवान बनेगा, बनेगा फिर? वो अभोक्ता की बात है कि भोक्ता की बात है? कौन रोता है?
साकार।
जिसमें वो भगवान प्रवेश करता है वो रोता है, वो ही भोगता है। सुपर्णा सुयोजा सखाया समानम रक्षम अभिशस् जाते, ऐसे ऋग्वेद की ऋचा आई है। ये संसार रूपी वृक्ष है, इसमें दो प्रकार के पक्षी हैं, एक पक्षी भोगता है और एक पक्षी अभोक्ता है। अभोक्ता है, अभोक्ता कौन है? जिसे गीता में अक्षर कहा है, जब भोगेगा ही नहीं तो चरित भी नहीं होगा, छीन भी नहीं होता वो आत्म शक्ति से। और जो भोगता है वो शने शने छीन भी होता है। हाँ, ये बात जरूर है, कोई आत्माएं बहुत भोगी होती है तो द्वापर का शुरुआत आते ही आते क्षीण हो जाती है, इब्राहिम प्रवेश कर जाता है। इब्राहिम के पीछे पीछे आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती है। कोई आत्मा ऐसी होती है कि बड़ी धीमी गति से क्षीण होती है। नहीं समझ में आया? धीमी गति से क्षीण होने के कारण वो अंत तक जाकर के ज्यादा पावरफुल बनी रहती है औरों के मुकाबले। तो उसे योगी कहेंगे या भोगी कहेंगे? हैं? उसे भी योगी ही कहेंगे।